नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज। सभी दलों के प्रमुख नेता रैलियों और रोड शो में जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा ने सदैव जनजातीय लोगों के हितों और कल्याण का रखा है ध्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष अभियान के चौथे संस्करण की सराहना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशनल सोसाइटी के रजत जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम को किया संबोधित। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के जबरवा के जंगलों और बारामूला जिले के सोपोर में दो आतंक रोधी अभियान जारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक साझेदारी की संधि पर किए हस्ताक्षर। और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में न्यू साउथ वेल्स ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप में भारत की अनाज सिंह ने महिला सिंगल्स का जीता खिताब। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा ने हमेशा आदिवासी हितों और कल्याण पर ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए आदिवासी भाई बहनों की आकांक्षाएं और स्वाभिमान हमेशा सर्वोपरि रहे हैं। झारखंड के बोकारो में चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में विजय संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में भाजपा सरकार ने राज्य को 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं, जो कांग्रेस से 4 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि हमने झारखंड बनाया, इसलिए इसका विकास भी हम ही करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की आलोचना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सोरेन सरकार ने झारखंड को लूटने का कार्य किया है, जबकि हम शिक्षा, आवास, रोजगार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनी तो हम भ्रष्टाचारियों को सख्त सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। आपके हक का पैसा आपके ही काम आएगा। झारखंड के बोकारो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उज्ज्वला योजना के बाद अब झारखंड को जल्द ही पाइपलाइन के जरिए सस्ती गैस मिलेगी, जिसके बाद सिलेंडर के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने गोगो दीदी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना से महिलाओं को सीधे उनके खाते में पैसे मिलेंगे। उन्होंने झारखंड में शून्य बिजली बिल योजना की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर शून्य बिजली योजना से सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार पहले 70,000 से 80,000 रुपये देगी और इसके बाद अतिरिक्त बिजली भी खरीदेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विशेष अभियान के चौथे संस्करण की सराहना की। विशेष अभियान के फलस्वरूप सरकारी खजाने को वर्ष 2021 के बाद से कचरा बेचने से 2,364 करोड़ रुपए के राजस्व समेत महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री मोदी ने एक पोस्ट में कहा कि अभियान की सफलता दर्शाती है कि सामूहिक प्रयासों से ठोस परिणाम हासिल किए जा सकते हैं और स्वच्छता तथा आर्थिक लाभ को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुशल प्रबंधन और सक्रिय प्रयासों के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि शोध और नवाचार क्षेत्र में निवेश वर्तमान और भविष्य के लिए निवेश है। उन्होंने कहा कि नवाचार और शोध सही अर्थों में अर्थव्यवस्था के चालक हैं। उपराष्ट्रपति ने यह टिप्पणी आज नई दिल्ली में महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के रजत जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि व्यापार, कारोबार, वाणिज्य और उद्योग में लगे लोगों की व्यवस्था के दबाव में नहीं आना चाहिए। वे समृद्धि के सृजक, रोजगार प्रदाता, अर्थव्यवस्था के चालक और सामाजिक सद्भावना के योगदान करता है और वे समाज के सम्मान के योग्य हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि व्यापार, कारोबार, वाणिज्य और उद्योग से संबंधित लोग समाज की सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कल से नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सहयोग से 6 दिन का भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करेगा। यह आयोजन 16 नवंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड समेत 8 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य व्यक्ति भाग लेंगे। आयोग ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकारों को प्रोत्साहन, संरक्षण और मजबूती देना है। आयोग ने कहा कि कार्यक्रम में मानवाधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन से संबंधित विचारों, अनुभवों और अभ्यासों को साझा करने का अवसर मिलेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि पर मूल रूप से दोनों देशों के नेताओं ने 19 जून को प्योंगयांग में हस्ताक्षर किए थे। निचले सदन ने 24 अक्टूबर को इस संधि का अनुमोदन किया था। रूस की संसद के ऊपरी सदन में इस विधेयक का अनुमोदन 6 नवंबर को किया। संधि की प्रस्तावना के अनुसार यह संधि दोनों देशों के हितों के अनुरूप क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और स्थिरता स्थापित करने के लिए है। संधि में कहा गया कि रूस और उत्तर कोरिया संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की प्रतिबद्धता, समानता तथा अंतर्राष्ट्रीय नीति के अन्य सिद्धांतों का सम्मान करते हैं और अन्य देशों के साथ मित्रता और सहयोगपूर्ण संबंधों का समर्थन करते हैं। भारत के 7 संस्थानों ने वैश्विक स्तर के शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान हासिल किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 ने दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने 44वां स्थान हासिल किया है, जबकि IIT बॉम्बे 48वें स्थान पर है। IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में जगह बनाने में सफल रहे हैं। IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, UPES और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे संस्थान शीर्ष 150 में शामिल किए गए हैं। यह रैंकिंग पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी और मध्य एशिया के 25 देशों के 984 संस्थानों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर और श्रीनगर जिले के जबरवा वन क्षेत्र में सुरक्षा बल आतंकवादी विरोधी अभियान चला रहे हैं। कश्मीर मंडल के पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके के जबरवा वन क्षेत्र में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। फिलहाल अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सेना की चिनार कमान के प्रवक्ता ने बताया कि बारामूला जिले के राजपुरा सोपोर इलाके में कल एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया। क्षेत्र में अभी तलाशी अभियान जारी है, विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। भारत की अनाहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में हांगकांग की हेलेन टैंग को 3-1 से हरा दिया। अनाहत ने टैंग को 8-11, 11-6, 11-3 और 11-4 से हराकर अपने करियर का 7वां PSA चैलेंजर टूर खिताब जीत लिया। बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने के बाद अवामी लीग द्वारा पहले विरोध प्रदर्शन की घोषणा के बाद ढाका में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। कल अवामी लीग ने अपने फेसबुक पेज पर नूर हुसैन दिवस मनाने की घोषणा की और पार्टी कार्यकर्ताओं से आज दोपहर 3 बजे ढाका के 0 पॉइंट शहीद नूर हुसैन स्क्वायर पर एकत्रित होने को कहा। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन ने इसी स्थान पर अवामी लीग के प्रदर्शन के विरोध में रैली की घोषणा की है, जिसके बाद तनाव पैदा हो गया है। शहीद नूर हुसैन दिवस के अवसर पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों ने पूरे देश में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की 191 टुकड़ियां तैनात की हैं। इसके अलावा पुलिस रैपिड एक्शन बटालियन और अन्य बलों को भी सतर्क रखा गया है। पुलिस ने ढाका के अमीन बाजार प्रवेश द्वार पर चेक पोस्ट स्थापित किए हैं और कल रात से ढाका जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है। शतरंज में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 टूर्नामेंट 5 से 11 नवंबर तक चेन्नई के अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी में खेला जा रहा है। यह प्रतियोगिता मास्टर्स और चैलेंजर्स दो श्रेणियों में हो रही है। अमेरिका के ग्रैंड मास्टर लेवोन एरोनियन ने 5वें दौर में फ्रांस के ग्रैंड मास्टर मैक्सिम वाचियर लाग्रेव को हराकर 3.5 अंक प्राप्त कर लिए हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी और ईरान के परहम मागसुदलू के बीच बाजी ड्रॉ रही। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 कल से बिहार के राजगीर में शुरू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल शाम इस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें भारत सहित 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यह आयोजन 20 नवंबर को समाप्त होगा। सभी मैच राजगीर स्थित खेल परिसर में नवनिर्मित हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस आयोजन में भाग लेने के लिए भारत, चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और कोरिया की सभी टीम बोधगया पहुंच चुकी हैं। कनाडा सरकार ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम SDS कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है। SDS योजना कनाडा में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक प्रमुख साधन है। कनाडा सरकार के इस फैसले से भारत के साथ साथ दुनिया भर के छात्र प्रभावित होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि देश में चल रही आवास और संसाधनों की कमी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्की ने मनोरंजन की दुनिया को जीवंत तथा अधिक मनोरंजक बनाने के लिए इफी एस्टा आयोजन करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य फिल्मों के प्रभाव, व्यंजन, कला और संवादात्मक अनुभवों के माध्यम से लोगों को जोड़ना है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।